पेट में भी षडंग है और फिर उसमें 64 कलाएं हैं और न जाने कितने उसमें भाग विभाग हैं। तो ऐसे जो विद्याएं हैं उन विद्या में से कौन सी विद्याकार है? राय जी उसका उत्तर दे रहे हैं, कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आती। कृष्ण भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ विद्या है। बतला रहे हैं जो इन प्रश्नों में और उत्तरों में 256 संख्या तक जड़ वस्तु और अप्राकृत वस्तु विचार में जड़ वस्तु और अप्राकृत वस्तु इनके तारतम्य से ये गोष्ठियों में प्रश्न उत्तर हुआ। हम लोग समझते हैं कि ये शिक्षा कौन सी शिक्षा हम लोग जानते हैं क्लास 1 से लेकर के और कहां तक शिक्षाएं होती हैं, कितने कितने इसमें विभाग हैं। संगीत शिक्षा भी है, धनुर्बाण भी शिक्षा है, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा भी है, जैसे द्रोणाचार्य ने दिया था, फिर दर्शन शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, समाज शिक्षा है, रसोई की शिक्षा है, जितने प्रकार के विभाग और सब प्रकार की शिक्षा ये हम लोग समझते हैं ना, किंतु अपराधिक जो शिक्षा नहीं समझते हैं, इसलिए इस शिक्षा के अनुसार में उसको ले आए समानता दिखला। सबसे बड़ी विद्या कौन है? ये सब तो विद्या है। विद्या कम समझते हैं जड़ विद्या, अपराधिक विद्या नहीं समझते हैं। अब अपराकृत विद्या उसी के समान तुलना देकर के बतला रहे हैं शाखा चंद्र न्याय। विद्या मैंने क्या ही है? विद धातु क्या बिन सब ज्ञान
से भी विद ज्ञान बिन से भी विचार में
क्या और
विद मैंने जाना
हाँ।
विद मैंने ज्ञान से भी विचार
हाँ।
विद में लाभ
ये वेद माने होता है वेद जो ज्ञान है पुस्तक है ना वेद ज्ञान का भंडार तत्वों का भंडार तो वो वेद जानना अथवा भगवान को जानना वेद का जो तात्पर्य है वेद के लिए जो वेद का जो प्रतिपाद्य विषय है उनको जानना ये वेद होता है विद्या उससे होता है विद्या। कृष्ण भक्ति ही सबसे सर्वोत्तम विद्या है। उसका पहला क्लास क्या है?
श्रद्धा।
नाम लिखाने कौन जाएगा? अभिभावक एक जाता है ना, एक छोटे से बच्चे को किसी को लेकर के स्कूल में जाएगा, बूंदी में लेकर के मैया जाती है या पिता जाते हैं या उसका काका चाचा भाई कोई भी हो तो जाता है, तो उसको कौन नाम लिखाने के लिए जाएगा?
पद्मपुरुष गुरु
वही साधु वही पहला वही उसको नाम लिखवाए। किसमें श्रेणी में लिखाएंगे? अभी श्रद्धा अभी तक लौकिक श्रद्धा थी, पूर्व पूर्व जन्म की उसकी सुकृति थी। अब ये साधु संघ से आरंभ हुआ पहला अभी क्लास। अब इसमें कोई जरूरी है ये सभी लोग एमए पीएचडी डिलीट पास कर लेंगे या बीच बीच में छठे 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 न जाने कितने जाकर के दो एक एमए क्लास वाले रह जाए। हम लोग पहले देखते थे बड़े बड़े शहरों में भी एमए पास करने वाले पहले आज से 50-60 वर्ष पहले कोई बड़े बड़े शहरों में भी नहीं मिलते थे। कलकत्ते में आशुतोष मुखर्जी एक थे, वो पहले व्यक्ति हैं जो बैरिस्टर, उससे पहले भारतवर्ष में कोई बैरिस्टर ही नहीं हुआ। पहले और उन्हीं तो ऐसे ही पहले ये सब ये कुछ नहीं, बहुत कम लोग होते थे, छटाई हो जाती थी। और इसके बाद में जब अपर क्लास आया 500 से आरंभ हुआ, मिडिल तक कोई कोई पहुंचे। हम लोग के यहाँ एक मिडिल में एक गणित के अध्यापक थे, वो थोड़े से बूढ़े जैसे थे, उनको कभी पुस्तक कोई देखनी नहीं पड़ती, ज्योमेट्री गणित इत्यादि बस देखा और मुख ही मुख में हाथ में लेकर के बस पड़ी, ऐसा मैंने देखा ही नहीं, ऐसे ऐसे बड़े कड़े थे, कुछ पूछा नहीं, बतला में स्टैंडर्ड उनके बेंच कर दे और स्कूल पीरियड के बाद भी उसको रख देते स्कूल में, सब लोग थर रहते थे उनके मारे, ये देख करके ही लोग पढ़ना छोड़ देते, जो दो चार बेंच लगा ना तो कुछ लोग छोड़ देते थे। इसके बाद में गए मिडिल के बाद में, तब फिर अपर में गए, उसको पास कर लिया तो बहुत बिरले सैकड़ों में से एक कोई एक लड़का तब आईए में नाम लिखवाया। बीए पास जब किया ना तब देखा जैसे ऐसे ऐसे सैकड़ों में से दो चार पीएचडी हमें पहले तो होता ही नहीं था, बड़ा मुश्किल था। तो ऐसे ही भक्ति राज्य में कर्म ज्ञान मिश्रा भक्ति में इसी में अधिकांश लोग रह जाते हैं, ये लोअर क्लास के जैसा है, कर्म मिश्रा ज्ञान मिश्रा भक्ति इसी को समझ लिया, थोड़ा सा ले लिया पानी, ले लिया पुष्प एक इसमें हैंगिंग बैग में, यमुना जी स्नान कर लिया 4 बजे, घर से चल पड़ी 3:30 बजे, 3 बजे और जाकर के यमुना में स्नान किया, चाहे छिछुटी ठंड हो या जो, स्नान करके वहां पर न जाने क्या पूजा किया वही जाने, और पूजा करके सब देवता देवियों को ये कैसे पीछे पीछे 9 बजे 10 बजे 11 बजे 12 बजे आकर के कुछ इतना भजन लोग क्या भजन किया। इसलिए ये सब उसी में छट जाएंगे, शुद्ध भक्ति में आना बड़ा भारी कठिन है। इसलिए कहते हैं जो जितनी प्रकार की जड़ भोग जननी विद्या, दो प्रकार की विद्याएं हैं, जड़ भोग जननी, जड़ भोगों को देने वाली एक विद्या ये है। जैसे आजकल की जितनी भी विद्याएं हैं, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई व्यवसायी बनेगा, कोई ये कर रहा है बीकॉम कर रहा है, बीकॉम किस लिए करते हैं, कारोबार तो करना पड़ेगा, कोई गड़बड़ ना कर दे इसलिए बीकॉम भी पढ़ते हैं, कोई इंजीनियर हम पढ़ते हैं, कोई कुछ पढ़ते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई यहाँ पर है ना प्रेम महाविद्यालय, जिससे कुछ नहीं होता तो वहां पर जाते हैं, ये सब सीखते हैं किस लिए, इसलिए कि रुपये पैसे होंगे नहीं, कुछ लाभ नहीं कर सकेंगे, विवाहता भी होगी नहीं, घर बाड़ी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई संसारिक सुख नहीं होगा। इसलिए आजकल संगीत भी मांग लिया, संगीत शिक्षा, आजकल लोग संस्कृत किस लिए नहीं पढ़ते, संस्कृत वही पढ़ते हैं अधिकांश लोग जिनको या तो पुरोहित पौरोहिताई करानी है या जिनके घर में पेशा से भागवत बांटने का काम है, इधर अधिकांश लोग या जिन लड़कियों को कोई टेस्ट किसी में नहीं है, एक उपाधि लेना है उसको शादी करानी है, अच्छा भाई संस्कृत तुम दे दो ले लेते हैं तुम लोग लिया था नहीं। तो इस तरह से ये सब जितनी भी विद्याएं ये किस लिए हैं, जड़ भोग जननी, केवल जागतिक प्रतिष्ठा धन संपत्ति विवाह और सुखी जीवन लाभ करने के लिए ये सब विद्याएं, और दूसरी की है जरातीत एक ब्रह्म विद्या है, अतः संसारिक दुखों से छुटकारा पाने के लिए, एक शांति पाने के लिए एक ब्रह्म विद्या है, उससे ही अच्छी है किंतु अंतिम विद्या ये है। इसके द्वारा सारू प्रसाई जी से इत्यादि मुक्तियां मिल जाती हैं, नित्य काल के लिए शांति भी मिल जाती है। किंतु सुख शांति माने क्या, शांति किसको कहते हैं? त्रिगुणों की साम्य भाव, त्रिगुणों का साम्य भाव। कोई इच्छा नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई सुख नहीं है, पत्थर पड़ा हुआ है, कोई उलाट दो, कोई गिरा दो, तोड़ दे भी उसे उसको कोई मिला नहीं। यह है शांति। संसारिक दुख नहीं है, खूब आराम से सो रहे हैं, कौन सोएगा? जिसको कोई चिंता है वो सोएगा, जिनको कोई निश्चिंत है, कोई काम नहीं है, धंधा नहीं, खूब आराम से सोएगा। तो यह है शांति, इसमें सुख नहीं है, है? इसलिए इनकी अपेक्षा भी जो श्रेष्ठ विद्या है वो विष्णु भक्ति विद्या है, यही उन्नतर विद्या है विष्णु भक्ति, विष्णुआंग लाभम। किंतु अब विष्णुआंग लाभम में भी बहुत से तारतम्य है। तारतम्य क्या? नारायण की भक्ति, रामचंद्र जी की भक्ति, राकेश की भक्ति, कैसी कैसी लालसा है ब्रजन नंदन के प्रति, गोपियों की जो भक्ति है, यही सबसे श्रेष्ठ विद्यावधु अब कल हम इससे सुनेंगे। साधन और साध्य का विचार हुआ, तत्पश्चात कृष्ण तत्व, राधा तत्व, प्रेम तत्व और रस तत्व के संबंध में साथ उन्होंने विलास तत्व नहीं बताया, उसके बाद में उसको पाने का उपाय बताया, कैसे मिलेगा? तो एकमात्र लोक के द्वारा मिलेगा, और ये लोग करोड़ों लोगों में से किसी एक को होगा। यदि किसी पूर्व जन्म के सौभाग्य से इस जन्म में कृष्ण की अहस्ति कृपा या भक्तों की अहस्ति कृपा की हो और उनका संग हो तो ये हो सकता है। हाँ प्रभु जी ने उनसे कहा, इस काम के लिए मैं आया था, जैसे आपकी महिमा सुनी थी वैसे ही मैंने देखा। फिर उन्होंने कहा कि आप जब आए हैं तो हमें 10 दिन कम से कम सोलह करके हमारा उद्धार का। मैंने 10 दिन क्या, मैं जीवन भर तक हम और तुम दोनों साथ में रहेंगे पूरी में और कृष्ण कथा में अपना दिन बिताएंगे। इसके बाद में दोनों चले गए। दूसरे दिन दोनों के लिए उत्कंठित थी, शाम को उसी ब्राह्मण विप्र के घर पर पधारे, विप्र जगह में निर्जन स्थल में जहाँ दूसरे कोई विघ्न बाधा न कर सकते हैं वहां दोनों। महाप्रभु जी ने फिर प्रश्न किया, प्रभु कहे कौन विद्या, विद्या मध्य सार, समस्त विद्याओं में सार विद्या क्या है? जगत में सबसे वही विद्या सार है जिससे कि अर्थ का उपार्जन हो और जिससे इंद्रिय सुख मिल सके, ये विद्याएं हैं। रामानंद जी महाप्रभु के प्रश्नों को सुनकर उसको सांसारिक दृष्टि की तुलना देते हुए बतला रहे। सांसारिक दृष्टि में जैसा प्रश्न है उसी के अनुरूप उदाहरण देते हुए बतला रहे। उन्होंने पूछा ये कौन विद्यासार है, तो राय ने कहा कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं। जितने भी विद्याएं हैं उनमें आत्मतत्व के लिए, शरीर के लिए नहीं, शरीर के लिए भी, मन के लिए भी, आत्मा के लिए, इनों के लिए कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त तो कोई दूसरी विद्या नहीं। महाप्रभु जी ने बतलाया विद्या बधु जीवन, विद्या भागवता बधु सा विद्या मतलब जिसके द्वारा भगवान के में चित्त लगता है। केन उपाय न कृष्ण मनोनिवेश, विद्या वही है जिसके द्वारा जाना जाए, विद्धातु से जानने से, क्या जानने से, साधारण रूप में जगत के कर्मी लोग इस शरीर को जानते हैं, जैसा विरोचन ने सुना, विरोचन और इंद्र दोनों ब्रह्मा जी के पास में गए। जो व्यक्ति आत्मा को जान लेगा वो अजर अमर हो जाएगा, उसको कोई पराजित नहीं कर सकता, सर्वत्र उसकी विजय होगी, कभी उसकी पराजय नहीं होगी और सब प्रकार से सुखी वो हो जाएगा। दोनों ब्रह्मा जी के पास में गए, दोनों ने मिल करके अपना अपना शब्द कहा। ब्रह्मा जी ने कहा 25 वर्ष यहाँ पर ब्रह्मचर्य रह करके गुरु गृह में सेवा करो, या तुम लौट जाओ ब्रह्मचर्य पूर्वक रह करके और फिर आना। 25 वर्ष के बाद में जब लौटे तो उन्होंने कहा ये देखो, ये शरीर को देख रहे हो? हाँ देख रहे। अच्छा अभी चले जाओ, मुंडन करके केशों को हटा करके सुंदर रूप से स्नान करके सज धज करके हमारे सामने आओ। तो वैसे ही आए, अजय देखो तो दर्पण, दर्पण देखो कैसा सुंदर है, बहुत सुंदर थे, दोनों बड़े सुंदर थे, जुआ थे। देखो ये जो देख रहे हो ना, यही तुम हो और यही इसी को जानने से तुम सुखी शांति और सब कुछ होगा, अजर अमर सब हो जाओ, मृत्यु भी नहीं हो। ये नित्य है, कभी अदल बदल होने वाला नहीं, आत्मा ऐसा तो। विरोचन सुन करके चला गया और अपने समाज में इसी का प्रचार करने लगा, खाओ पियो मौज करो और ये शरीर ही सर्वस्व है, इसका अतिरिक्त और कुछ नहीं। और इस प्रकार के विचार वाले जितने व्यक्ति हैं वो सब विरोचन के दल वाले हैं। आजकल मैं समझता हूं कि विरोचन का दल ही सब पूर्ण रूप में, दो चार आदमी सिर्फ सिरे होंगे जो उनके दल में नहीं, बाकी सब उन्हीं के दल। और इंद्र थोड़ी दूर जाकर के लौट आए। ब्रह्मा जी ने पूछा क्यों लौट आया? तो इसलिए लौट आया कि आपने कहा जैसे आत्मा अजर अमर है, सदा आनंदमय है, उसको कोई दुख नहीं होता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ये दर्पण में हमको दिखला दिया, तो जब यही है तो 7 दिन के बाद में केश उग जाते हैं, शरीर भद्दा लगता है और नाना प्रकार की चिंताएं होती हैं, और एक दिन में वो मर जाता है, प्रति संशय में वो बदल जाता है। इसलिए शरीर को आत्मा नहीं हो सकता और कभी ये सुखी नहीं रहता, इसलिए ये आत्मा नहीं हो सकता। ये ठीक है, अच्छा जाओ। फिर आना 25 वर्ष के बाद, फिर 25 वर्ष ब्रह्मचर्य करके तब फिर गए। ब्रह्मचर्य करके गए माने ब्रह्मचर्य रहे माने क्या, उनकी तो शादी नहीं थी, ब्रह्मचर्य क्या है? यहाँ पर ब्रह्मचर्य माने ब्रह्म में विचरण जो करता है, सब समय इसी की चिंता करना, इस तत्व की, इस तत्व में, तो वो तो गृहस्थ है ब्रह्मचारी। गृहस्थ कैसे ब्रह्मचारी रहेगा ना, रहेगा रहेगा इसी तरह से ब्रह्म में विचरण करना। राजा जनक इत्यादि और हमारे शिवाक पंडित इत्यादि ये सभी ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्म में सब समय विचरण करने वाले। 25 वर्ष के बाद में फिर गए तो उन्होंने कहा कि स्वप्न में कहन, स्वप्न वाला, स्वप्न में जिस पुरुष को देखते हो वही अजर अमर नित्य आत्मा है, उसको जान लेने से तुम ऐसा हो गया। रास्ते में गए फिर सोचा भाई स्वप्न में तो देखते हैं कि सांप खदेड़ रहा है, भाग रहा हूं, किसी ने गला काट दिया, कभी देखते हैं कि भिखारी है, कभी राजा हो गए, कभी कुछ हो गया, बदलता रहता है वो तो, और मरने के साथ ही साथ में स्वप्न भी खत्म हो जाएगा। ये तो अजर अमर नहीं है, शांति और सुख नहीं, उसमें भी दुख होता है याद। अब 25 वर्ष के बाद में फिर आया, फिर 25 वर्ष के बाद में का सुसुप्ति में जब आदमी एकदम सो जाता है उस समय में जो पुरुष रहता है वही आत्मा है, क्योंकि उस समय कोई चिंता नहीं हुई। सुन करके चले गए, फिर लौट करके चले आए, वो तो कभी भी आत्मा नहीं हो सकता है सुसुप्ति का पुरुष, क्यों, क्योंकि उसमें भान भी नहीं होता है, खुद सोते हैं अच्छी तरह से, ये मैं हूं या नहीं, मैं का भी भाव नहीं रहता, और उसमें न तो सुख होता है न कुछ होता है, दुख की दुख का अभाव जरूर बोध होता है, किंतु उसमें पैसा नहीं मालूम होता है। कहा अच्छा जाओ 25 वर्ष के बाद, फिर 25 वर्ष के बाद जब आए तो फिर उपदेश दिए, तब आत्मतत्व का उपदेश, सब आत्मतत्व का उपदेश। देखो ये जीवात्मा भगवान का अंश है, ये भगवान को भूल करके इस संसार में आई है, इसके अभी ऊपर का स्थूल शरीर, बीच में लिंग शरीर और भीतर में आत्म शरीर, यह भगवान का नित्य सेवक है, ये अजर अमर है, इसको माया कभी नहीं लगती, इसको संसारिक दुख नहीं है। तो फिर ये कैसे होता है, आत्मबुद्धि इसमें कर लिया है, देहात्मबुद्धि हो गई है, यथार्थ में आत्मा माया से बंधा हुआ कहीं नहीं है, कोई बंधन ही नहीं है जीवात्मा को, वो सत्य में मुक्त है ना? किंतु वो समझ रहा है देहात्मबुद्धि के वजह से जो माया में नहीं बद्ध हो। गुरु जी कहते थे जैसे घड़ी को रख दो, कपड़े से ढक दो, उधर तक घड़ी चलती नहीं है, टिक 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 चलती तो रहती है किंतु ऊपर से दिखाई नहीं पड़ती। ऐसे आत्मा तो नित्य है, सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, माया उसको कैसे ढक सकती है, यह संभव है, नहीं ढक सकती, माया तो जड़ है, तो ये माया कैसे ढक देगी उसको जो उससे भी दुर्बल है, कैसे क्यों ढकेगी। तो ये अभन घटन पटियती एक शक्ति है जो उसमें देहात्म बुद्धि करा देती है, दुख न रहने पर भी माया से बद्ध नहीं होने पर वो समझता है कि मैं शरीर हूं, जिस दिन ये हट जाएगा उस दिन आत्मा शुद्ध हो जाएगी। भगवान की सेवा तो हो ही रही है, इसलिए मुक्त पुरुष लोग जीवात्मा को देखते हैं कि वो सब समय किसी न किसी रूप में वो भगवान की सेवा करते हैं, जीव बद्ध ही नहीं है, बंध और मुक्त काल्पनिक है, जब बद्ध ही नहीं है तो मुक्त भी काल्पनिक है, आ रहा है समझ में। जब बंध नहीं है तो मुक्त क्या, सब काल्पनिक, भागवत में भी ऐसा श्लोक आया है, बंध मोक्ष अज्ञान अवबंध मोक्ष, ये सब अज्ञान कल्पित है, ये सब
किंतु आत्मा के लिए बंधन तो है,
यही तो समझ, ये जिस समय समझ में आ जाएगा बस तो।
हाँ, आत्मा का बंधन नहीं है, आत्मा बद्ध नहीं है, किंतु आत्मा तो बद्ध स्थिति में है। बद्ध
जब बंधन नहीं है, अज्ञान कल्पित है, तो ये अज्ञान ही समझो। इसी की अनुभूति ही मोक्ष है।
कर्म के द्वारा तो बंधन हो
है,
कर्म के द्वारा बंधा हुआ है जी।
जीव कब कर्म किया? जब जीव कब कर्म किया जो बंधन हो गया? तथा शक्ति में कर्म किया ना, वैकुंठ में किया, कब कर्म किया? जो कुछ बतलाया जाता है बहुत दूर से, इसलिए भगवत भजन करके इस चीज को, रियल स्थिति को समझना पड़ेगा। जब ही वो सब हट जाएगा उस समय समझेंगे कुछ है, ये बंधन नहीं है,
कुछ नहीं है, ये तो शून्यवाद आ जाएगा,
नहीं आएगा
या मायावाद प्रसक्ति आएगा। क्योंकि हाँ, ये क्षेत्र ऐसा है कि जिस समय जीव का बंधन नहीं है, किंतु वर्तमान रूप में जीव तो इस संसार में आए हुए हैं, इसलिए उनको बंधन नहीं है। कर्म भी है, कर्म हुए हैं जो बंधे भी है,
कहाँ आए हैं
उसको तो झूठा
करने, जीव कहाँ आया है?
इस कर्म हुए जो है बद्ध अवस्था में,
इसलिए जो देखा जा रहा है कि
तो
मायावादी वृंदावन की एक रेणु में विश्व ब्रह्मांड अखिल कोटि कोटि अगणित है, तो यदि वृंदावन की एक धूली कणा में है तो फिर ये जगत कहाँ है?
ये तो सर्वव्यापी वो ज्ञानी के लिए, जो ज्ञानी रहते वो समझेंगे, किंतु मायावादी नहीं समझते।
तो फिर हम लोग समझे जैसे हम लोग बद्ध ही नहीं है, बस समझ लिया बस हो जाएगा। इसलिए भगवत भजन करते हुए संग में रहते रहते लीला कथाओं के चिंतन में और स्मरण में सब समय लगे रहे, मैं सबसे अच्छा उपाय, सबसे अच्छा। इसी का नाम है, इस चीज को जानने का नाम है विद्या। विद्या को यदि कहा जाए हरिभक्ति है, हरिभक्ति ही वो विद्या है। हरिभक्ति क्या है? सब सिमट करके आ गया है नाम में, नाम में और श्रवण में कीर्तन में आए, सब सिमट करके। साधन भी है, साध्य भी है, जितना ही ये करेंगे उतना ही हमारा साध और साधन दोनों होता चले। अंत में हम जिसको देखते हैं कि ये साधन है, वही सिद्ध है, वही साध्य है। नाम अभी साधन के रूप में है, हरि कथा श्रवण करना भी साधन है, किंतु एक दिन ऐसा आएगा भजन करते करते ऐसे ही ये श्रवण और कीर्तन स्मरण ही साध्य होगा। होगा कि नहीं होगा? एक दिन होगा। जैसे नारद जी का श्रवण और कीर्तन ये साध्य, गोपियों का कीर्तन ये साध्य है और श्रवण हो जाएगा। इसलिए अभी हमारे लिए जो साधन है, एक दिन ऐसा हो सकता है भजन करते करते एक दिन हमारा वो साध्य हो जाए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए कृष्ण भक्ति से बढ़कर के और कोई विद्या नहीं है। कहते हैं श्रील प्रभुपाद जी, विद्या की श्रेष्ठता विषय प्रश्न के उत्तर में रामानंद जी ये बतला रहे हैं, किंतु देखो भाई, विश्वास होना चाहिए, खूब विश्वास के साथ में, दृढ़ एकदम भाव लेकर के विश्वास के साथ। जैसे एक आदमी हरिनाम करते करते एक श्लोक पढ़ता है, जयति जयति, और एक मधुर मधुर मेतर मंगलम मंगलानम सकल निगम बल्ली सफलम चित्स्वरूप सकृदपि परिवीतम श्रद्धया हेलयाव लिखुबर नर मात्रम तारे एत कृष्ण। प्रतिज्ञा करते कारण एक कृष्ण नाम यदि कोई करे ऐसा मधुर मधुर में सर मंगलम मंगला, मधुर में मधुर और मंगलों में जितना प्रकार का मंगल है उस समस्त मंगलों में कृष्ण नाम ही सबसे मंगलदायक है। और वेद रूपी कल्प लता का वो सुन में फल है। यदि कोई प्रीति के सहित क्या सकुट अभी परिगीतम श्रद्धया श्रद्धापूर्वक कहे या खेलापूर्वक अनादर पूर्वक न करे। खेला माने अनादर नहीं है तब तो वो दूसरा हो जाए। खेला माने अवहेला करके करता है। यदि वो करता है तो एक बार भी यदि करता है तो वो भव सागर से अवश्य ही तार देगा। अच्छा ये जो कह रहा है कौन कह रहा है कहां की बात है? पुराणों की बात। पुराणों के वक्ता कौन है? कौन है? कृष्ण स्वयं है, भगवान है। व्यास को भी रो तो व्यास भी स्वयं संत नहीं और कृष्ण को भी भगवान है। और ये पुराणों के वक्ता मूल रूप में वो भगवान ही है। वेदों से भी अधिक इसका महत्व है। वेदों के अर्थ को वो पूर्ण करते हैं। यदि किसी को इसमें संपूर्ण यदि विश्वास है इसका नाम है श्रद्धा। शास्त्र में श्रद्धा होना चाहिए। अच्छा कृष्ण नाम कोई करेगा खेला से या श्रद्धा से? खेला से और श्रद्धा से कहने का तात्पर्य श्रद्धा से करेगा तो भक्ति होकर के उपज जाए। और यदि श्रद्धा पूर्वक भी ना करे अवहेला करके भी करे अरे बेकार का कृष्ण नाम क्या कर रहा है यहां पर हेला पूर्वक। एक अपने तोता का नाम रख दिया कृष्ण या तोता से पढ़वा रहा है कृष्ण 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 वो भी पढ़। अपने बछड़े का नाम रख दिया श्याम ये सब अवहेला पूर्वक। पद पूरण के लिए कभी उसका प्रयोग किया कोई पद गा रहे हैं रामा हो रामा कर दिया। ये सब चीजें हैं इस रूप में कर दिया। ये आदर भी नहीं हुआ अनादर भी नहीं हुआ इसलिए ये हेला किया। ऐसे भी यदि करेगा तो निश्चित रूप में भव सागर से ये कृष्ण नाम सार देगा। ऐसा विश्वास हम लोगों को है कि नहीं है? अभी ये देखो यदि विश्वास है तो ठीक है उसका हो जाएगा। आज जिसको विश्वास नहीं है तो अभी तो काम तो करेगा वो तो हम लोग ऐसा विश्वास हरि नाम करते समय इस श्लोक को या जय जय दीनानंद रूपम मुरारे धर्मचर्य धर्म ध्यान पूजा आदि जपनम प्रथम अपनी शक्तिदातम प्रथम अपनी शक्तिदातम किसी प्रकार से एक बार भी ऐसे नाम को लिया जाए तो क्या होगा सतत परिगीत सदेवा भृगुवर नर्मात्र जैसे जय तिनामानंद रूपा मुरारे दुर्मति धर्म ध्यान पूजा जत्नम परमानृतम एकम हमारा जीवन और पूजन ये नाम हमारे जीवा पर। इस विश्वास के साथ में हम यदि ये करते हैं अच्छा ये बात ठीक है कि गलत है? जब कृष्ण नाम एक बार भी उदित हो जाए तो उसका जरूर भव सागर से पार हो जाए। यदि नास्तिक नहीं है तो सबको ये विश्वास और इस विश्वास के साथ में करना चाहिए। और जब इस विश्वास के साथ में करेगा ना तो अपने आप वो सब चीजें दूर हो जाएगी। इसी तरह से भक्ति के संबंध में भी ऐसे ही विचार करनी चाहिए। ये श्रवण कीर्तन स्मरण जप इत्यादि सब ये भक्ति इस विश्वास के साथ में होना चाहिए। किसी को ये कह रहे हैं, उसी के द्वारा आत्मा को जानेगा, भगवान को जान लेगा और अपने आप माया इत्यादि भी सबको सब कुछ जान जाएगा। पहले माया को जान करके छोड़ देगा, माया उसे छोड़ देगी और धीरे धीरे इसी का नाम है भव सागर से पार, माया का छूटना, आसक्ति छूटना। इस संसार में रहते हुए भी एक आदमी मुक्त है माया से, यदि माया में कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई आसक्ति नहीं, इसी का नाम है ये। और सर्वप्रथम मुक्ति अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के अब हमारे लिए कोई चीज की प्रयोजन नहीं है, कोई चीज की आवश्यकता नहीं रह गई, बस भगवत भक्ति ही हमारी मूल विद्या है, इसी के द्वारा हमारा सब कुछ हो जाएगा, ऐसा विश्वास। जिस आदमी को ये विश्वास है उसका लक्षण क्या होगा? बस और कुछ करेगा ही नहीं, बस श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दस साक्षात निवेदनम इत्यादि, और कुछ नहीं करेगा संसार। तब वह स्वरूप सिद्धा भक्ति में चला जाए, स्वरूप सिद्धा भक्ति में भी सकाम निष्काम वो सबको छोड़ करके शुद्ध भक्ति में, स्वरूप सिद्धा भक्ति में भी सात्विक राजसिक तामसिक ये भक्ति होती है, स्वरूप सिद्धा में भी श्रवण कीर्तन में भी कर रहा है और उस लिए कर रहा है, धन के लिए रुपया पैसा के लिए ये सब के लिए, तो ये सब हो जाएगा। हाँ सब सिद्धा में भी, और तब जब शुद्ध रूप से जब होगा उत्तम भक्ति का वो अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा धनातम अनुकुल्यन कृष्णानुकुल्यन भक्ति, इस भक्ति का जब आश्रय करेगा और सबको छोड़ देगा तो उसके द्वारा वो छह जो पत्ते हैं भक्ति लता के वो सब होकर के धीरे धीरे भक्ति। हरिदास ठाकुर और महाप्रभु के जितने भी परिकर थे सब इसके उदार हैं। हम लोगों को इसके में समय लगाना चाहिए और सब समय में समय बर्बाद करना है जीवन, ऐसा समझ करके इस काम में लगना। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण भक्ति विद्या ही सर्वोत्तम विद्या है, इसके द्वारा बिना प्रयत्न के नाम करने से ही अपने आप वो विद्या है, बिना प्रयत्न।
ये सब तो हम जानते हैं, ये रोज दिन सुन रहे हैं, किंतु पारिपार्श्विक परिस्थितियां ऐसी कुछ उलझन दिमाग में
पारिपार्श्विक, इसीलिए सुनने का ये तार उसको फेंक दो, उतार करके वो कुटा ही फेंक दो, यही तो भजन है। और इस सबका जो कुटा है ना वो सबको उतार करके फेंक दिया जाए और शुद्ध रूप से भजन किया जाए। जड़ भोग जननी विद्या, जड़ भोग को जो देने वाली, रुपया पैसा धन प्रतिष्ठा इत्यादि को भक्ति देने वाली, ये सबको देने वाली जो विद्या है, और जड़ातीत ब्रह्म विद्या, और इस जड़ातीत ब्रह्म विद्या की अपेक्षा भी विष्णु भक्ति, विष्णु भक्ति से नारायण भक्ति, नारायण भक्ति से भी राम भक्ति, और उससे भी अधिक मथुरे द्वारकेश और मथुरे, और उससे भी ब्रज भक्ति सबसे श्रेष्ठ, ये कृष्ण भक्ति विद्या है। उन्नत स्तर में ये विद्या होती है। तब कर्म हरि तोषर जब सा विद्या तन मति जगह, ये श्रीमद् भागवत में 4:29 में बताया गया। सब कर्म हरि तोष, ऐसा कोई हम कोई भी कर्म करें, कोई भी कार्य करें, कहीं भी कुछ भी करें, ये देखेंगे कि इससे हरि जो भगवान हैं उनकी प्रीति है या नहीं। हम कहीं जा रहे हैं इसमें भगवान की प्रीति है कि नहीं, हम मान लिया कि परिक्रमा में जा रहे हैं, हम परिक्रमा में जा रहे हैं किसके लिए, पहले से पूछो सब कुछ में इससे भगवान प्रीत होते हैं तो जाओ, और नहीं प्रीत होते हैं अपने शरीर की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तब सबके लिए सब कुछ में ऐसा होता है। जैसे छोटे विप्र और बड़े विप्र परिक्रमा करने आए हैं, कैसे है कैसा उन्होंने किया। हमारे रूप सनातन जी कैसे परिक्रमा कर रहे हैं गोवर्धन और वृंदावन की। हा राधे ब्रज देवी के चले जीते हे नंद तू सुतः श्री गोवर्धन कल्प पावत करे। सब समय कृष्ण की लीलाओं का स्मरण हो रहा है। गोवर्धन में जा रहे हैं, कृष्ण ने यहाँ पर उठा, यहाँ पर ये सब सुनिए, यहाँ पर ये राधा कुंड में राज हुआ, यहाँ पर दोपहर की लीला मध्यान्हिक लीला हुई, यहाँ पर सायान्य लीला हुई, चंद्र सौवर चंद्र की गति को रोक दिया हुआ। क्या परिक्रमा का यही लक्ष्य है ना। नंदगांव में गए, वहां पर क्या देखा, बंसी बट देखे फिर कदम देखा, फिर कदम में क्या क्या लिया उसका स्मरण आया, हृदय आनंद से भर गया। रूप गोस्वामी की भजन स्कूटी पर गए, रूप गोस्वामी की भजन पद्धति हमने देखा, उसका स्मरण किया। वहां से आए फिर क्या हुआ, उद्धव क्यारी, उद्धव क्यारी में क्या देखा, वहां पर जाने के साथ साथ में वहां की लीला स्मृति सब आई। यहाँ पर उद्धव जी आए, गोपियों से बातें हुए, भ्रमर गीत इत्यादि हुआ और गोपियां किस प्रकार से वो कह रही हैं। पासी में प्रेम सरोवर, नंदगांव, बरसाना, जावर, चोकी बन, मधुबन इत्यादि ये सब हुआ। सब समय कृष्ण लीला की स्मृति हो और ऐसा कोई हो जो इसका स्मरण दिलाए, तब तक ये परिक्रमा थी। इस तरह से वह विद्या तत्कर्म, वो कर्म हमारे जो हरि तोषम भगवान का तोष विधान परितोष करते हैं, प्रतिविधान करते हैं, तो वो कर्म भक्ति हो जाएगी और वही भक्ति ही यथार्थ में विद्या है। और उसी के द्वारा सन मति जया, जिसके द्वारा कृष्ण के चरण में उत्तरोत्तर चित्त लग, कृष्ण की कथाओं के अतिरिक्त इसे बढ़कर के सबल और कोई उपाय नहीं है। इसलिए भागवत में ऐसा क्या बताया, भागवत की सप्तम में बताया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दक्षम साक्षात मनवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु के नवलक्षणा क्रियेत भगवती अद्धा तन्मने अतितम विद्या उत्तमम। यहाँ पर विद्या वहां पर पूज्य रखा है, क्योंकि पहले प्रश्न किया तुमने सबसे अच्छी क्या चीज तुमने पढ़ी, क्या पढ़ी मैंने क्या विद्या पढ़ी, तब तो उत्तर में प्रहलाद महाराज जी बता रहे सबसे बड़ी विद्या क्या है, ये भगवान की भक्ति जो नौ प्रकार की भक्ति। इस तरह से कहते हैं कि ये नौ प्रकार की भक्ति भी श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, तीर्थों में जा रहे हैं, कर रहे हैं, किंतु देखो जो उद्देश्य क्या है ये सबका, कीर्तन कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है, श्रवण कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, और अपने तुम समर्पित हुआ कि नहीं, समर्पित होकर के कर रहा है ना, कैसे इन चीजों को पहले कर करके और पीछे से समर्पण करेंगे तब तो भक्ति नहीं हो, तब तो आरोप सिद्धा हो जाए। क्या मतलब, तब तक समय पहले जब वो श्रीमद भागवत का नारायणम
समर्पण
काम किया हमने, क्या काम किया, जब जब करोसी जदाशनासी जद्यु होती जब
तपस्या
मदद, जो ये भक्ति नहीं हुई सिद्धा, ये आरोप सिद्धा भक्ति है। ऐसा मत करो जो पहले कर लिया आप फिर भगवान को निवेदन कर दिया, ऐसा नहीं, अपने को समर्पित कर दो। कैसे समर्पण होगा, जब सचमुच में गुरु के चरणाश्रय में वैष्णव के चरणों के में हमने अर्पित और उनकी कृपा से हमारा सब कुछ भगवान की सेवा के लिए हो रहा है, और भगवान में क्रमशः मति लग रही है, उत्तरोत्तर बढ़ रही है, माइक भाव दूर होता चला जा रहा है, तब तो ये भक्ति का फल है। और भक्ति करते हैं और माइक की प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा, यही सब आ रहा है, तो क्या समझना चाहिए? गड़बड़ हो गई। ये सब चीजों को समझ करके रोज रोज हम लोग कहते हैं इसके अतिरिक्त तो कोई को बात ही नहीं है। इसलिए घर में रोज झाड़ू क्यों देते हैं? एक दिन झाड़ू देने से ही हो जाए,
गंदा हो जाता है,
कैसे गंदा हो जाए? एक दिन तो झाड़ू दे दिया और सब निकल गया, अब हवा आ जाएगी ना तो ले आती है। इसलिए रूप तो यही बात है, नए नए रूप में यही हल है। तो इसलिए इन सब चीजों को सुन करके हम लोगों का मन ही इतना ये मट्टी का आंगन है, तरह तरह की चीजें आ जाती हैं, नई नई चीजें आ जाती, समस्याएं होती हैं और सुनते हैं तो भी कुछ ऐसे हमारे संकल्प और ऐसे मन में अभिलाषाएं हैं जिनको हम छोड़ नहीं पाते। जानते हैं जैसा करना भक्ति करना ठीक है, जानते हैं ऐसा ही हम करेंगे, तो अपने आप अपना परिवेश ऐसा बना लेते हैं जो कर। इसके लिए कौन दायी है, कौन दोषी है? जीव अपने सही दे। हम जानते हैं कि यह सब कोई काम में नहीं आएगा जो कर रहे हैं, अभी नहीं होता। इसलिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदम तत्कक्षात्म निवेदनम इसी पुरुषार्थिता विष्णु भक्ति के नव लक्षण है। ये नौ प्रकार की जो भक्ति है